सभी गुरु भक्तों को भक्ति पूर्ण नमस्कार। आज के भक्ति सत्संग का आरंभ करने से पूर्व आज वातावरण में क्या अनुभव हो रहा है इसकी हम सभी अनुभूति लेने का प्रयत्न करेंगे। भक्ति सत्संग का आरंभ होते ही वातावरण में दैवीय परिवर्तन होने लगा है। उसी के साथ आज हमें अंतःकरण से किसका स्मरण हो रहा है? हमारा अंतःकरण अपने प्राणप्रिय गुरुदेव जी को छोड़कर और किसका स्मरण करेगा? अर्थात हमें परम प्रिय सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी का अत्यंत भक्ति भाव से स्मरण हो रहा है। गुरुदेव जी का दिव्य अस्तित्व अनुभव हो रहा है। साक्षात गुरुदेव जी का और उनकी दिव्य लीलाओं का हमें स्मरण हो रहा है। आज वातावरण पूर्णतः गुरु तत्व से प्रभारित हो गया है। सत्संग में गुरु तत्व प्रचुर मात्रा में हमारे लिए कार्यरत हो गया है। इससे हमें ध्यान में आ रहा है कि आज का भक्ति सत्संग पूर्ण रूप से गुरुमय करने वाला, गुरु तत्व के चैतन्य में सराबोर करने वाला है। ऐसे गुरुमय सत्संग आरंभ करते समय हम सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के चैतन्यदायी श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे गुरु नारायण, आज साक्षात आप हम सभी को गुरुमय करने वाले हैं। उसके लिए हम अपना मन पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में सौंप पाए। आपकी दिव्य अवतारी चरित्र गाथा हमारे अंतर मन पर अंकित हो। आपके श्री चरणों में अनन्य भाव से हमारी आर्त प्रार्थना है। हे गुरुवर, आप साक्षात ब्रह्म रूप है, आनंद स्वरूप है। आपके श्री चरणों में ही परम सुख की अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। हे गुरुवर, आप शाश्वत ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। माया और ब्रह्म, सुख और दुख इन द्वंद्वों के परे है, भाव भावनाओं के परे है। सत्व रज और तम इन त्रिगुणों के परे है गुरुवर। हे विश्वात्मा ने, आप आकाश समान विशाल है, सर्वत्र और सदैव प्रत्येक क्षण के आप साक्षीदार है। आप नित्य चिरंतन अविनाशी है, अत्यंत निर्मल और स्थिर है। साक्षात परब्रह्म तत्व जिसमें वास करता है, ऐसे है सच्चिदानंद स्वरूप गुरुनाथ। आपको हमारा भावपूर्ण प्रणाम। उसे स्वीकार करे गुरुवर, स्वीकार करे। श्री गुरु स्तुति रूपी ये भक्ति नमन पुष्प धीरे से श्री चरणों में समर्पित हो रहे हैं। अब हम भक्तिपूर्ण श्लोक के माध्यम से श्री गुरु का अनन्य भाव से स्तुतिगान करेंगे। श्लोक के प्रत्येक शब्द को अंतकरण से अनुभव करेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु भक्ति की तरंगों में स्वयं को झोंककर श्री गुरुमय होने हेतु आए आप सभी गुरु भक्तों को मेरा अत्यंत भक्तिपूर्ण नमस्कार। गत कुछ वर्षों से हम सप्तर्षि की आज्ञा अनुसार श्री गुरु की जन्मतिथि श्री गुरु के जन्मोत्सव के रूप में अत्यंत आनंद से और उत्साह से मना रहे हैं। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव जी को ऐसा कभी भी नहीं लगता कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, उत्सव किया जाए। इसलिए उन्होंने अपनी आयु के 73वें वर्ष तक साधकों को अपना कोई भी उत्सव मनाने नहीं दिया। परंतु साधक अपने परम प्रिय गुरुदेव जी की जन्म तिथि को बिना भूले उनका स्मरण करते हैं। कोई श्री गुरु की भक्ति भाव से मानस पूजा करता तो कोई अपने घर में ही श्री गुरु के छायाचित्र के सामने मिष्टान्न का नैवेद्य दिखाता। इस प्रकार साधक अपनी भक्ति अर्पण कर श्री गुरु के जन्मदिन का उत्सव सूक्ष्म रूप में अपने अंतर में ही मनाते थे। श्री गुरु के जन्मदिन के निमित्त हम उत्सव मना पाए ऐसी इच्छा प्रत्येक साधक के मन में सदैव होती है। साधकों के अंतर की यही भक्तिपूर्ण इच्छा समझकर सप्तर्षि ने गत कुछ वर्षों से श्री गुरु के जन्मोत्सव के विविध समारोह आयोजित करवाए। हम सभी ध्यान में रखेंगे कि श्री गुरु का जन्मोत्सव ये कोई केवल एक बाह्य उत्सव नहीं, अपितु साधकों के अंतर में उनके हृदय मंदिर में श्री गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति प्रेम से और आनंद से मनाया जाने वाला भक्तिमय उत्सव है। अब तक मनाए गए श्री गुरु के अनेक जन्मोत्सवों की स्मृतियों को उजागर कर हम सभी अपने हृदय के गर्भगृह में श्री गुरु का भक्ति अर्चन करेंगे। हृदय की अत्यंत भक्तिमय अवस्था में हमें इस वर्ष श्री गुरु का जन्मोत्सव मनाना है। उसके लिए हम अभी से अपने मन को अधिकाधिक भावमय अवस्था में भक्तिमय स्थिति में ले जाएंगे। गुरु की महिमा अंतर्मन पर अंकित कर अखंड उनके स्मरण में तल्लीन हो जाएंगे। जो जीव गुरु प्राप्ति होकर भी उनका महत्व नहीं जानता, वह निर्मल जल से भरे सरोवर के निकट होते हुए भी प्यासा समझे, घर में अन्न सामग्री होते हुए भी भूखा समझे और कल्पवृक्ष समीप होते हुए भी दरिद्र समझे, ऐसे अपने धर्मशास्त्र में कहा है। इसलिए हमें इस कलयुग में मिले साक्षात श्री गुरु की महिमा क्या है, उसे हम अपने अंतर मन पर अंकित करेंगे। अपने धर्म साहित्य में, धर्म ग्रंथों में श्री गुरु की स्तुति करने के लिए अत्यंत सुंदर श्लोक और मंत्र है। उसमें गुरु महिमा वर्णित है। उन मंत्रों का अर्थ समझकर उनसे हम अपने प्राणप्रिय गुरुदेव जी की स्तुति करेंगे। जो ज्ञानदाता और भक्ति दाता है। ऐसे गुरुदेव जी की अत्यंत भक्ति भाव से स्तुति करेंगे। ये स्तुति करते समय सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी का स्मरण कर ऐसा भाव रखेंगे कि हम सभी उनकी ही स्तुति कर रहे हैं। गाय यदि दूध देने वाली न हो तो उसे गाय कहना शोभा नहीं देता। बेल पर यदि फूल न खिलते हो तो उस बेल को शोभा नहीं। कमलों के बिना जलाशय को शोभा नहीं। नागरिकों के बिना नगर को शोभा नहीं। वो नगर वीरान लगता है। उसी प्रकार गुरु के बिना शिष्य को, ज्ञानी व्यक्ति को पूर्णता नहीं आती। यहीं पर हमें गुरु महिमा ध्यान में आती है। सच में यदि हमारे जीवन में गुरुदेव नहीं आते तो हमारे जीवन का क्या अर्थ रह जाता? हमारा जीवन भी वीरान निरस हो जाता। गुरुदेव जी ने हमारे जीवन में प्रवेश कर उसे खरा उद्देश्य प्रदान किया है। वसंत ऋतु में जैसे संपूर्ण सृष्टि खिल उठती है, वैसे ही हमारा मन पल्लवित हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। वर्षा ऋतु की आनंददायी वर्षा की फुहारों समान हमारे जीवन का भी गुरु भक्ति और गुरु प्रीति की आनंदमयी फुहारों से सिंचन हो गया है। वो आनंदित होकर नृत्य करने लगा है। त्रिवार सत्य है कि अब हमें जब गुरुदेव जी मिल गए हैं तब हमें जीवन में कुछ और पाना शेष रह गया है क्या? धर्मशास्त्र बताता है कि गुरु अपने शिष्य को केवल एक अक्षर का भी ज्ञान दे तब भी शिष्य उसका मोल चुका नहीं सकता। कारण पृथ्वी तल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देकर शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता है। हमें तो सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने आत्मोद्धार करने वाली जन्म मृत्यु चक्र रूपी घोर पाश से मुक्त करने वाली साधना सिखाई है। फिर ऐसे श्री गुरु का हम पर कितना ऋण है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? वास्तव में हम उसके लिए असमर्थ हैं। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने साधकों की समस्त बाधा संकट और उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों का हरण कर लिया है, इसलिए वे हमारे लिए साक्षात संकट हरण है। इतना ही नहीं अपितु गुरुदेव जी ने समस्त विपदाओं से हमारी रक्षा कर अपनी प्रीतिमय छाव तले साधकों को रखकर उनका चित्त हरण भी किया है। उन्होंने हम साधकों पर अपार प्रीति का वर्षाव कर सभी को अपना बना लिया है। ऐसे चित्तहारी नयन मनोहारी श्री गुरु का अब हम सभी भक्ति भाव से स्मरण करेंगे और उनके अनुपम रूप की भक्ति भाव से स्तुति करेंगे। श्री गुरु का जन्मोत्सव समारोह मनाने का स्थान हमारा हृदय है। इस हृदय में हमने अब तक संजोए श्री गुरु के विविध रूप पुनः एक बार अनुभव करते हुए उनकी भक्ति अर्चना करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गुरु का भक्तिपूर्ण स्मरण करेंगे। हृदय मंदिर में विराजमान श्री गुरु का अस्तित्व अनुभव करने के लिए हमारा मन अत्यंत व्याकुल हो गया है, इसलिए गुरु स्मरण करते ही कुछ ही क्षणों में मन भावावस्था में लीन हो गया है। श्री गुरु के अत्यंत मनोहर चित्तवेधक रूप के दर्शन हमें होने लगे हैं। हमारे हृदय मंदिर के सिंहासन पर वह रूप विराजमान है। शुभ्र श्वेत कुर्ता और पायजामा परिधान किए वो सलोनी सजीली छवि मन को अपार शांति प्रदान कर रही है। प्रीति प्रक्षेपित करते हुए उनके नयन वात्सल्य भाव से ओतप्रोत स्मित हास्य हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, मन की प्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसे श्री गुरु के परम पावन श्री चरणों में शतशः नतमस्तक होते हुए हम पूर्ण रूप से उनके उस परम दिव्य रूप में खो गए हैं। हृदय सिंहासन पर आरूढ़ श्री गुरु के दर्शन लेते हुए हमें क्या अनुभव हो रहा है? गुरुदेव जी का सिंहासन केवल सिंहासन ही नहीं अपितु राज सिंहासन है। राज सिंहासन पर आरूढ़ गुरुदेव हमें दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में कोदंड धनुष और पीठ पर अक्षय तुणीर है। रामराज्य के संस्थापक एवं एकबाणी श्री रामचंद्र के रूप के श्री गुरु के दर्शन लेते समय अंतर्मन अपार कृतज्ञता भाव से भर गया है। उसी कृतज्ञता भाव से श्री गुरु चरणों पर मस्तक टेकते ही एकाएक मुरली की मधुर धुन हमारी कानों में पड़ रही है। अपना मन मुरली की उस मधुर धुन की ओर खींचा चला जा रहा है। ये मधुर स्वर कहाँ से आ रहा है ये देखने के लिए हमने अपना मस्तक श्री गुरु चरणों पर से धीरे से उठा लिया है। तब ध्यान में आया कि राम रूप में गुरुदेव जी के स्थान पर साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। गुरुदेव जी के श्री कृष्ण रूप में दर्शन लेते समय हमें ध्यान में आ रहा है कि गुरुदेव जी के श्री कृष्ण स्वरूप की प्रचिति देने के लिए ही ये मुरली धुन होने लगी है। शंख चक्रधारी श्री कृष्ण रूप आज गुरुदेव जी के रूप में हमारे समक्ष है। उनके दर्शन से हमें बहुत आनंद हो रहा है। श्री कृष्ण स्वरूप गुरुदेव जी के उस दर्शन रंग में हम रंग गए हैं। श्री गुरु का ये श्री कृष्ण रूप आंखों में संजोकर हम उनके श्री चरणों में नमन कर रहे हैं। अब हमें ध्यान में आ रहा है कि गुरुदेव जी का ये रूप भी परिवर्तित हो रहा है। अब श्री गुरु कौन से रूप में दर्शन देंगे, इसलिए हम उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे हैं। हमने देखा कि चंदन रंग के रेशमी वस्त्र, कंधे पर नीले आकाशी रंग का उपरण और कमर पर गुलाबी पट्टा, ऐसी वेशभूषा में श्री गुरु का दिव्य दर्शन हमें हो रहा है। उनके सिर पर मुकुट और गले में मोगरे के फूलों का हार और गुलाब के पुष्पों का हार बहुत सुंदर लग रहा है। उनका वो मनोहर रूप देखते ही हम उसी में खो गए हैं। जब भान में आए तो ध्यान में आया कि ये तो श्री गुरु का दत्त रूप है। श्री गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के तत्व समाये होने से सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव साक्षात दत्त गुरु है। श्री गुरु का दत्त रूप हम अनुभव कर रहे हैं। इतने में ही ध्यान में आ रहा है कि उनके पीतांबर का रंग बदल रहा है। क्या हो रहा है ये हमें समझने से पहले ही अब उस जगह जामुनी रंग के वस्त्र दिखाई देने लगे हैं। अब हम अपनी गर्दन उठाकर देख रहे हैं तो सामने श्री गुरु का गदा पद्मधारी सत्यनारायण रूप हमें दिखाई दे रहा है। श्री गुरु ने हमें सत्यनारायण रूप में भी दर्शन दिए। इस विषय में हमें अत्यंत कृतज्ञता लग रही है। कलयुग में भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले इस सत्यनारायण रूप के श्री चरणों में हम शरणागति से नतमस्तक हुए हैं। श्री गुरु के विविध अवतारी रूपों का दिव्य दर्शन लेते समय उनके तेज को आंखों में संजोने पर हमारे नेत्र कृतज्ञता से बंद हो रहे हैं। आंखें बंद करते करते पुनः हमें सामने के दृश्य में कुछ परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। साक्षात श्री गुरु अब हमें कौन से रूप में दर्शन दे रहे हैं? तो गुरुदेव अब हमें रथारूढ़ रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस समय हमें ब्रह्मोत्सव का स्मरण होने लगा है। शाम ढलने लगी है। संध्या काल के शुभ समय पर रथारूढ़ श्री विष्णु स्वरूप गुरुदेव जी समस्त साधकों को दर्शन दे रहे हैं। सभी साधकों की और वात्सल्यमय दृष्टि से देख रहे हैं। साधकों को चैतन्य, शक्ति और आनंद प्रदान कर रहे हैं। साधकों का जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। श्री गुरु की ये कैसी अद्भुत लीला है। श्री गुरु की ये दर्शन लीला हम कृतार्थ भाव से अनुभव कर रहे हैं। आंखों की पलकें झपकते झपकते सामने क्या दिखाई दे रहा है। अब तक जिन्होंने हमें विविध अवतारी रूपों में दर्शन दिए, वे गुरुदेव अब हमें मूल आदिनारायण रूप में दर्शन दे रहे हैं। शांत, निर्मल, नीली छटायुक्त क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे श्री गुरु के दर्शन हमें हो रहे हैं। हम सभी साक्षात परब्रह्म गुरुदेव जी के मूल आदिनारायण रूप के श्री चरणों में शतशा कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सचमुच हमारे गुरु कितने महान हैं, ये सोचकर हमारे अंतकरण में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा है। देह की रोमांच और नेत्रों द्वारा कृतज्ञता की सरिता बहने लगी है और ये कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले इस नाम से देह धारण कर भूतल पर सगुण रूप में अवतरित गुरुदेव जी का महात्म्य कौन से शब्दों में वर्णित करें। अभी हमने जैसे अनुभव किया उनका रूप कभी योग निद्रा में होने वाले शेषशायी श्री विष्णु समान लगता है, तो कभी राम राज्य के समान हिंदू राष्ट्र हेतु कटिबद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामावतार का स्मरण होता है। कभी धर्म के उत्थान का कार्य करने वाले युगंधर श्री कृष्ण जैसे अनुभव होता है, तो कभी साधकों को आनंद देने वाले गुरुदेव जी का रूप इस कलयुग में भी पूर्णावतारी मनमोहन श्याम सुंदर के समान सभी का चित्त आकर्षित करने वाले अनुभव होता है। ऐसे एक नहीं तो अनेक अनुभूतियां देने वाले गुरु नारायण के दर्शन से प्रत्येक जीव धन्य धन्य हो गया है। हमारे गुरुदेव जी की महिमा अपार है, अनंत है। साक्षात भगवान को भी अपनी महिमा से अधिक गुरु महिमा श्रेष्ठ लगती है। ऋषि, मुनि, संत, महात्मा इन्होंने स्वानुभव से बताया है कि कितना भी वर्णन करे, कितना भी शास्त्रार्थ करे, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, तब भी गुरु के अतिरिक्त चित्त को परम शांति मिलना दुर्लभ है। असंभव है, ये त्रिवार सत्य है। इसकी ही प्रचिति लेने के लिए और गुरु महिमा अपने मन पर और अधिक अंकित करने के लिए हम आज एक सुंदर प्रसंग सुनेंगे। ये प्रसंग भी एक गुरु शिष्य का ही है। वे गुरु शिष्य थे संत श्री समर्थ रामदास स्वामी और वामन पंडित। अत्यंत विद्वान वामन पंडित को भगवान की कृपा से गुरु प्राप्ति कैसे हुई, इसके साथ ही गुरु की कृपा से उनके विद्वत्ता का अहंकार कैसे नष्ट हुआ, उनके जीवन का उद्धार कैसे हुआ, ये हम इस कथा से समझ लेंगे। ये कथा हमें केवल सुननी नहीं है, अपितु उसके साथ अपने अंतर मन पर गुरु महिमा अंकित करनी है। लगभग 450 वर्ष पहले की बात है। वामन शंकर शेष नामक एक बड़े विद्वान, संस्कृत के गहन अभ्यासक, शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें सर्वत्र पंडित संबोधित किया जाता था। आगे उनका नाम वामन पंडित ही हो गया। उस समय आर्यावर्त में एक से बढ़कर एक विद्वान थे। वामन पंडित ने विद्वत्ता चर्चा में अनेक विजयश्री प्राप्त किए थे। जो कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करने आता, उसे वे पराजित कर देते। इस प्रकार वे अपनी दिग्विजय की मशाल लेकर भ्रमण करते। परंतु उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। एक रात एक विशाल वटवृक्ष पर ब्रह्म संबंध अर्थात ब्रह्म राक्षसों की आपस में लड़ाई हो रही थी। दो ब्रह्म राक्षस तीसरे ब्रह्म राक्षस को वहां से भगाने में लगे थे। वे तीसरे से बोले, तुम यहां मत रहो, ये स्थान हमने वामन पंडित के लिए रखा है। वामन पंडित शास्त्रार्थ कर अन्यों को तुच्छ लेखते हैं। वे शास्त्र अच्छा जानते हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपना अहंकार संजोने का मार्ग बनाया है। अहंकार संजोने के लिए जो धर्म का उपयोग करता है, वह ब्रह्म राक्षस होने का पात्र है। वह तीसरा ब्रह्म राक्षस उस वृक्ष पर रहने के लिए जगह मिले, इसलिए वहां से जाने के लिए आनाकानी कर रहा था। परंतु शेष दोनों सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने उस तीसरे ब्रह्म राक्षस से वामन पंडित की अनुमति ले आने के लिए कहा। अगले दिन सवेरे वो ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण का रूप धारण कर वामन पंडित के पास गया। उस समय वामन पंडित इंद्रायणी के तट पर थे। उसने वामन पंडित को पूरा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर वामन पंडित के मन में विचार आया, बाप रे, मैं इतना बड़ा विद्वान पंडित, मेरे केवल नाम से ही सभी विद्वान भयभीत हो जाते हैं और मरने पर ब्रह्म राक्षस हो जाऊंगा, अर्थात मेरी विद्या का गर्व मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में लेकर जाएगा। ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर वामन पंडित अत्यधिक घबरा गए। फिर वामन पंडित उस ब्राह्मण रूपी ब्रह्म राक्षस से बोले, इस योनि में न अटकने का क्या कोई उपाय नहीं है? ब्रह्म राक्षस बोला, उपाय है ना, नहीं कैसे? इस पर उपाय है संत संगति। संत संगति से ये दुख टल सकता है। वामन पंडित ने उस ब्रह्म राक्षस को उस वट वृक्ष पर रहने की अनुमति दे दी। ब्रह्म राक्षस अपने रास्ते चला गया। अहंकार कैसे घात करता है, ये उन्हें ध्यान में आया। अब वामन पंडित ने अब तक अर्जित किए सभी विजय पत्र फाड़ दिए। सर्व शास्त्र इंद्रायणी में विसर्जित कर दिए और संतों की खोज में निकल पड़े। उनकी भेंट संत तुकाराम जी से हुई, परंतु तुकाराम जी ने उन्हें समर्थ रामदास स्वामी जी के पास भेजा। वामन पंडित समर्थ जी के पास पहुंच गए। साक्षात हनुमान जी के अवतार और प्रभु रामचंद्र जी के दास अंतर्ज्ञानी समर्थ जी को वामन पंडित के विषय में सब कुछ पता था। उन्होंने वामन पंडित को हिमालय के बद्रिकाश्रम में रहकर तपस्या करने के लिए कहा। समर्थ रामदास स्वामी की आज्ञानुसार वामन पंडित ने हिमालय में 12 वर्ष तपस्या की। 12 वर्षों के उपरांत वे पुनः समर्थ रामदास स्वामी जी के पास गए, परंतु अब भी कुछ कमतरता रह गई थी। रामदास स्वामी ने उन्हें पुनः 12 वर्ष तपस्या करने के लिए भेजा। उन्होंने पुनः 12 वर्ष तपस्या की, परंतु भगवत दर्शन नहीं हुए। वामन पंडित अभी व्याकुल हो गए। वे संत सान्निध्य का आनंद नहीं उठा पा रहे थे। वे सोचने लगे, अब इस जीवन का क्या काम? इस अहंकारी शरीर को जीवित रखकर क्या करना है? इसे नष्ट करना ही ठीक है। उन्होंने निराश होकर देह समर्पित करने का निश्चय किया। वे अपनी पत्नी सहित एक ऊंची पहाड़ी पर गए। नीचे गंगा मैया पवन वेग से बह रही थी। उन्होंने सोच लिया कि ये स्थान देह समर्पण के लिए उचित है। अपनी पत्नी गीराबाई सहित उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और नदी में छलांग लगाने वाले ही थे कि साक्षात भगवान श्रीहरि उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान ने उन्हें रोक लिया। फिर भगवान ने अपना हाथ वामन पंडित के सिर पर रखा और बोले, हे वामन, तुम्हारा कल्याण हो। वामन पंडित की शास्त्राभ्यासी एवं तर्क करने वाली बुद्धि तुरंत जागृत हो गई। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आप इतनी तपस्या एवं कसौटियों के उपरांत मिले, मुझे आशीर्वाद दिया, परंतु शास्त्रों में ये कहा है कि आशीर्वाद देने के लिए दाया हाथ मस्तक पर रखते हैं? फिर आपने तो मेरे सिर पर पाया हाथ रखा। भगवान बोले, सिर पर दाहिना हाथ रखना ये गुरु का अधिकार है, मेरा नहीं। हे वामन, तुम्हें इतना भी पता नहीं, फिर तुम्हारी विद्वत्ता का भला क्या उपयोग? अरे, जब तक गुरु का दाहिना हाथ सिर पर नहीं आता, तब तक किसी भी जीव का आध्यात्मिक प्रवास पूर्ण नहीं होता। हाँ, परंतु गुरु अपना दाहिना हाथ किस प्रकार रखेंगे, ये केवल गुरु ही जानते हैं, वो मैं नहीं बता सकता। वह हाथ वे मानसिक रूप से भी रख सकते हैं और कृपा दृष्टि से भी रख सकते हैं। वामन पंडित को वो मान्य नहीं हो रहा था। वे बोले, भगवान, आप तो चराचर सृष्टि के निर्माता साक्षात ब्रह्मांड नायक है, तब भी आप कहते हैं कि गुरु का अधिकार आपसे भी बड़ा है, वो कैसे? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोले, हाँ, गुरु का अधिकार मुझसे भी बड़ा है। अवतार धारण करने के उपरांत मैं गुरु की ही शरण जाता हूँ। श्री रामावतार में मैं महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र के पास गया। श्री कृष्णावतार में गुरु सांदीपनी के पास गया। गुरु तो गुरु ही होते हैं। हे वामन, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, तब तक मेरा रूप बुलाने पर प्रकट होता है और फिर अंतर्धान हो जाता है। वो किसी भी निमित्त से केवल कुछ ही देर के लिए प्रकट होता है और पुनः अदृश्य हो जाता है। परंतु गुरु का रूप अथवा उनका तत्व अखंड हमारे साथ ही होता है। वामन पंडित अब अत्यंत व्याकुल हो गए। भगवान को बीच में ही रोककर उन्होंने अधीरता से पूछा, फिर दाहिना हाथ सिर पर रखने वाले गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे? भगवान बोले, सज्जनगढ़ पर। तुम सज्जनगढ़ पर जाओ, वही तुम्हें गुरु मिलेंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब वामन पंडित के ध्यान में आया, सज्जनगढ़ अर्थात समर्थ रामदास स्वामी। वामन पंडित ने भगवान को नमस्कार किया और वे पुनः सज्जनगढ़ पर जाने के लिए निकले। समर्थ रामदास स्वामी अंतर्ज्ञान से समझ गए कि वामन पंडित को साक्षात नारायण ने मेरे पास भेजा है, वे मेरी ओर ही आ रहे हैं। वामन पंडित सज्जनगढ़ पर पहुंच गए। उन्होंने रामदास स्वामी जी की स्तुति की, उनके चरण स्पर्श करते हुए वंदन किया। समर्थ प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना दाहिना हाथ वामन पंडित की पीठ पर रखा। समर्थ बोले, पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। अच्छा हुआ, अपना अहंकार छोड़ने के लिए इतने वर्ष तपस्या की, फिर भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए और यहाँ भेजा। शाबाश, अब तुम में पहले की तुलना में विशेष अंतर पड़ा है। वामन पंडित सतर्क थे। उनके मन में विचार आया, समर्थ ने अपना दाहिना हाथ मेरे सिर पर न रखते हुए पीठ पर रखा है, अर्थात अब भी कोई परीक्षा देनी शेष तो नहीं रह गई। ब्रह्मा राक्षस की योनि टालने के लिए और श्री गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए वामन पंडित व्याकुल थे, परंतु शास्त्रार्थ संपन्नता और तीक्ष्ण बुद्धि पुनः आड़े आ गई। उनसे रहा न गया और उन्होंने समर्थ जी से पूछा, गुरुदेव आपने दाहिना हाथ तो रखा परंतु मेरे सिर पर नहीं, अपितु पीठ पर रखा है। स्वामी जी इसका क्या कारण है? समर्थ जी बोले, अरे पगले, बाया क्यों न हो, पर साक्षात नारायण ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखा ही है ना। इस पर वामन पंडित बोले, हाँ परंतु उन्होंने ही कहा कि मेरे सिर पर आप दाहिना हाथ रखेंगे, फिर आपने दाहिना हाथ पीठ पर क्यों रखा? समर्थ प्रभु भक्ति से विह्वल स्वर में बोले, अरे वामन, नारायण का बायां हाथ भी नारायण का है और ये मेरा दाहिना हाथ भी नारायण का ही है। वहां नारायण ने हाथ रखा और यहां भी नारायण ही तो है, सर्वत्र नारायण ही नारायण है। नारायण में ही ये रामदास भी समाया है। समर्थ के ये वचन सुनते ही वामन पंडित का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया, उनका मन अहंकार रहित हो गया। उन्हें आत्म जागृति होकर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई। श्री गुरु की ये कैसी अपार कृपा और कितना सामर्थ्य! वामन पंडित के कंठ से स्वर नहीं निकल रहे थे, वे निशब्द हो गए। फिर वे गदगद होकर बोले, मेरे समस्त शास्त्र और इतने वर्षों की तपस्या गुरु कृपा के सामने तुच्छ है। समर्थ रामदास स्वामी के रूप में इस प्रकार वामन पंडित को गुरु प्राप्ति हुई। तदुपरांत समर्थ ने वामन पंडित को उपदेश किया। वे बोले, अपनी लेखनी को भगवान का गुण वर्णन करने में लगाओ। वामन पंडित ने आगे अपना सर्व लेखन केवल और केवल भगवान की महिमा का गुणगान करने में किया। उनके लेखन में सदैव यमक जुड़े रहते थे, अर्थात तुकबंदी रहती थी, इसलिए समर्थ रामदास उन्हें प्रेम से यमक्या वामन कहने लगे। वामन पंडित और समर्थ रामदास स्वामी इनके इस प्रसंग से हमें क्या सीखने मिलता है? भगवान हमारे अंतर्मन पर श्री गुरु महिमा किस प्रकार अंकित कर रहे हैं, उसे हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। वामन पंडित बड़े विद्वान थे, शास्त्राभ्यासी थे, परंतु उस ज्ञान का उन्हें अहंकार था। ब्राह्मण रूप में आए ब्रह्म राक्षस से हुई चर्चा के पश्चात उन्हें अपने अहंकार की तीव्रता ध्यान में आई। उन्हें भान हुआ कि अहंकार उन्हें ब्रह्म राक्षस की योनि में पहुंचा देगा, और फिर उन्होंने ब्रह्म राक्षस के बताए अनुसार संत संगति द्वारा अहंकार नष्ट करने के लिए संतों की खोज आरंभ कर दी। संत तुकाराम महाराज जी से भेंट होने पर उन्होंने उन्हें समर्थ रामदास स्वामी के पास भेजा। यहाँ हमें ध्यान में आता है कि अहंकार अपने उद्धार के लिए कितना घातक होता है। अहंकार के कारण होने वाली हानि को रोकने के लिए हम भी उस अहंकार से सचेत हो जाएंगे। समय पर ही हम सावधान हो जाएंगे। संत सान्निध्य से अहंकार नष्ट करने के लिए वामन पंडित समर्थ रामदास स्वामी जी के पास गए, परंतु समर्थ ने क्या किया? तो उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल संत सान्निध्य से ही अहंकार नष्ट हो जाता है, अपितु उसके लिए तपस्या अर्थात साधना भी करनी चाहिए। तपस्या से निर्माण होने वाली ऊर्जा से अहंकार नष्ट होने लगता है। इससे सीखकर हम भी प्रयत्न करेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने हमें उद्धार के लिए विविध माध्यम दिए हैं। सत्संग, संत सान्निध्य, ये भी हमारे उद्धार के महत्वपूर्ण माध्यम है। परंतु उस संत सान्निध्य का लाभ लेने के लिए हमारी उतनी क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता निर्माण होने हेतु हम अपनी साधना बढ़ाएंगे। इसलिए संत सान्निध्य का लाभ लेने की क्षमता हमें निर्माण होने में सहायता होगी। साधना रूपी तपस्या से हम में विद्यमान दोष, अहंकार, विकार दूर कर स्वयं में परिशुद्धता आने के लिए प्रयत्न करेंगे। तदुपरांत ही हमें संत संग का खरा लाभ होगा। वामन पंडित ने दो तप अर्थात 24 वर्ष तपस्या की, तब भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए वे व्याकुल और निराश हो गए। अंत में उन्होंने देह समर्पण करने का निश्चय किया। वामन पंडित ने यदि देह समर्पण किया होता तब उनकी देह तो नष्ट हो जाती, परंतु उनके अहंकार का क्या? उनका अहंकार वैसे ही रह जाता। अगला नया जन्म उसी अहंकार सहित होता। भगवान ये नहीं चाहते थे। भगवान को उनका उद्धार करना था, इसीलिए भगवान ने उन्हें देह समर्पण से रोका। अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने उन्हें गुरु के पास अर्थात समर्थ रामदास स्वामी के पास भेजा। इससे सीख लेकर हम सभी अहंकार निर्मूलन के लिए प्रयत्नरत रहेंगे। भगवान ने हमें ये जन्म अपने उद्धार के लिए दिया है और अहंकार का नाश करने वाले गुरु भी हमें प्राप्त हुए हैं। श्री गुरु के दिशा दर्शन के अनुसार इस जन्म में अहंकार का निर्मूलन कर स्वयं को परिशुद्ध करने का जो अवसर हमें मिला है उसका लाभ लेंगे। हम सभी कठोरता से प्रयत्न करेंगे। अहंकार के निर्मूलन का महत्व और उसकी आवश्यकता आज के इस सत्संग द्वारा भगवान ने अपने अंतर मन पर पुनः एक बार अंकित की है। हमारे सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव अहंकार विरहित, अहंकार शून्य है। इसका भान रखते हुए हमसे अहंकार के निर्मूलन के लिए प्रयत्न हो, उसके लिए हमें ऊर्जा प्राप्त हो। चैतन्य प्राप्त हो, इसलिए हम अनन्य भाव से गुरुदेव जी की शरण जाएंगे। श्री गुरु के श्री चरणों में शरणागति से नतमस्तक होकर हम सभी व्याकुल होकर याचना करेंगे। अत्यंत भक्तिपूर्वक श्री गुरु को पुकारेंगे। हे सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी, हे वात्सल्यमयी मूर्ति, हमें आपके परम पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। गुरुदेव स्थान दीजिए, हमें आपसे प्रक्षेपित होने वाले चैतन्य का लाभ होने दीजिए। गुरुदेव हमारे ध्यान और मन में आपका अखंड स्मरण रहने दीजिए। हे गुरुदेव, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण केवल गुरु सेवा के लिए समर्पित होने दे। हमसे आपकी चरण सेवा अखंड करवा ले। हमारे मुख में सदैव आपका नाम रहने दे। हे भगवान, हे दीन दयाल, गुरु सेवा और आपके दिव्य स्मरण से हमारा अहंकार नष्ट होने दे। हे गुरुदेव जी, हमें कुमार्ग की दिशा में चलने की कुबुद्धि कभी न हो। हमें केवल और केवल आपके लिए, आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए स्वयं को संपूर्ण समर्पित करना है। आपके परम दिव्य श्री चरणों में अपना अस्तित्व मिटाना है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने हमें इतना कुछ दिया है कि अब हमारे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी शेष नहीं। हे गुरुदेव जी, आपके चरणों में अब केवल एक ही याचना है कि हम सभी को आपके परम दिव्य श्री चरणों का सदैव सान्निध्य मिले। हम शुद्ध चित्त एवं मनोभाव से आपकी निस्वार्थ सेवा करें। हे दयानिधे, गुरु सेवा और आपके दिव्य स्मरण से हमारा अहंकार नष्ट होने दे। हे गुरुदेव जी, हमारा संपूर्ण जीवन आपके नाम से, आपके स्मरण से ओतप्रोत हो जाए। हमारा विश्व नाममय गुरुमय होने दे। आपकी स्मरण भक्ति, आपके कीर्तन भक्ति ही हमें इस भव सागर से पार कराएगी। हे गुरुदेव, इस भक्ति का दान हमें मिले। सच में गुरुदेव, हमें इस भक्ति का दान मिले। हे गुरुदेव, आपके नाम की कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए हमें शक्ति मिले। हमारे साथ साथ विश्व भर में गुरु भक्ति करने वाले समस्त जीवों को, आपकी चरण सेवा करने वाले समस्त भक्तों को, सभी साधकों को सुख शांति आनंद प्राप्त हो। सर्व भक्तों को परमानंद की अनुभूति हो। सच में गुरुदेव, सर्व भक्तों को परमानंद की अनुभूति हो। हे करुणाकर, हे वात्सल्य सिंधु, परम कृपालु गुरुदेव, गुरु भक्ति करने वाले प्रत्येक जीव की, गुरु भक्त की सर्व संकटों से, सर्व विघ्न बाधाओं से रक्षा होने दे। गुरुदेव के केवल स्मरण से ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर अंतकरण सच्चे ज्ञान से प्रकाशमय होता है। इसलिए हे गुरुदेव जी, हम पर कृपा बरसाए। गुरु ज्ञान का ज्ञानामृत हम सभी अखंड प्राशन कर सके। आप ही हमारे अंतकरण में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें गुरुदेव। इस गुरु ज्ञान रूपी दीप के प्रकाश में हमारे जीवन का मार्गक्रमण हो। हे प्रीति स्वरूप गुरुदेव जी, ये मार्गक्रमण हम सहजता से कर सके, इसके लिए आप ही हमें शक्ति एवं आशीर्वाद दे। गुरु सेवा और आपके दिव्य स्मरण से हमारा अहंकार नष्ट होने दे। हे विश्व पालक गुरुदेव जी, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे चराचर का उद्धार करने वाले जगदोद्धारक, हमसे निरंतर साधना के प्रयास हो तथा आपके अवतारी कार्य में सहभागी होने हेतु गुरु सेवा होने दे। साधना हेतु हमें ऊर्जा प्राप्त हो, चैतन्य प्राप्त हो, इसलिए हम आपके चरणों में शरण आए हैं। हे गुरुवर, हमारी ये अनन्य भाव से की प्रार्थना स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु स्वयं अहंकार विरहित होते हैं, इसलिए वे शिष्य का अहंकार नष्ट करने में समर्थ होते हैं। अपना अहंकार नष्ट करने का सामर्थ्य उनमें ही है। ऐसे निरहंकारी सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी की कृपा से ही हमें इस जीवन का उद्धार करने का अवसर मिला है। अहंकार नष्ट करने के लिए कैसे प्रयत्न करने हैं, इसके लिए दिशा और प्रेरणा आज हमें मिली है। उसके साथ हमें अहंकारी माया रूपी पाश से मुक्त करने वाले गुरु की महिमा भी भगवान ने इस कथा से हमारे ध्यान में ला कर दी है। अब हम उस गुरु महिमा का अवलोकन करेंगे। लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात भी भगवत दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए हताश होकर देह समर्पण करने निकले वामन पंडित को भगवान ने रोक दिया। उनके कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उन्हें गुरु के पास अर्थात सज्जनगढ़ पर समर्थ रामदास स्वामी जी के पास भेजा। वास्तव में वामन पंडित तो इतने बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ में पारंगत थे, तब भी उन्हें उद्धार के लिए गुरु की आवश्यकता थी। इसी से गुरु का महत्व ध्यान में आता है। सचमुच गुरु के बिना तरणोपाय नहीं। अपने जीवन में गुरु का महत्व अनन्य है। भगवत चरणों तक पहुंचने का मार्ग सरल सुलभ करने के लिए भगवान ये दायित्व गुरु को सौंप देते हैं, कारण गुरु भगवान के ही सगुण रूप है। गुरु ही जीवन में विविध प्रसंग लाकर जीवन को आकार देते हैं और भगवत चरणों तक पहुंचाते हैं। यहाँ हमें पुनः एक बार ध्यान में आता है कि कितना भी शास्त्रार्थ करे, कितने भी ज्ञानी हो जाए, तब भी गुरु के अतिरिक्त चित्त को परम शांति मिलना असंभव है। ये त्रिवार सत्य है। सर्व शास्त्र और सहस्रों वर्षों की तपस्या भी गुरु कृपा के सामने अत्यंत अल्प है। श्री गुरु की महिमा बताते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। स्वयं भगवान ने वामन पंडित को गुरु का महत्व बताया। भगवान कहते हैं, गुरु का अधिकार मुझसे बड़ा है। अवतार धारण करने पर भी मैं गुरु की ही शरण जाता हूँ। शिष्य के सिर पर कृपा का दाहिना हाथ रखने का अधिकार गुरु का है। इसलिए स्वयं भगवान ने भी वामन पंडित के सिर पर दाहिना हाथ नहीं रखा। इसका अर्थ, गुरु का अधिकार शिष्य के जीवन में कितना बड़ा है, इसकी महिमा भगवान ने भी बताई। गुरु महिमा यदि भगवान को इतनी अधिक लगती है, तो हमारे जैसे सामान्य जीवों को वो कितनी लगनी चाहिए। भगवान नारायण ने गुरु की महिमा को ध्यान में रख वामन पंडित के सिर पर दाहिना हाथ न रखते हुए बायां हाथ रखा, परंतु ये बात समर्थ के ध्यान में आने पर एक बार नारायण ने सिर पर हाथ रखा है, इसलिए उन्होंने सिर पर हाथ नहीं रखा, अपितु वामन पंडित की पीठ पर हाथ रखा। इस विषय में वामन पंडित के पूछने पर वे बोले, एक बार नारायण ने सिर पर हाथ रखा है तो पुनः अन्य किसी के हाथ रखने की आवश्यकता नहीं। इसी से हमारे ध्यान में आता है कि समर्थ के मन में भगवान नारायण के प्रति कितना भाव था। भगवान ने गुरु की महिमा बताई थी, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। इसके विपरीत नारायण की ही महिमा को ध्यान में रखते हुए भगवान द्वारा हाथ रखे गए स्थान पर स्वयं हाथ न रखते हुए दूसरी ओर रखा। इस प्रसंग से भगवान का गुरु के प्रति भाव और गुरु का भगवान के प्रति भाव हमें सीखने मिला है। साक्षात परब्रह्म ही श्री गुरु के रूप में हमारे लिए कार्यरत हुआ है। साक्षात भगवान, वही गोविंद, वही नारायण हमें गुरु रूप में मिले हैं। ये हमारे लिए हरि का अनुपमेय प्रसाद ही है। गुरु और हरि में एकरूपता की अनुभूति हम ले पा रहे हैं। ये अनुभूति लेकर वास्तव में हमारा मन आनंद में दंग हो जाता है। हम सब कुछ भूलकर गुरुदेव जी के अनुसंधान में अपना अंतःकरण तल्लीन करेंगे। हम सभी का परम भाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। गुरु ने यदि हाथ रखा तो भी वो साक्षात भगवान का ही, नारायण का ही होगा। जब हम गुरु का स्मरण करेंगे तब वो नारायण का ही स्मरण होगा, और नारायण का स्मरण करने पर वो गुरु का ही स्मरण होगा। गुरु की सेवा नारायण की ही सेवा है। इस प्रकार नारायण और अपने गुरु एक ही होने से उनमें से किसी एक का भी स्मरण किया तो भी हमें दोनों तत्वों का लाभ होने वाला है। ऐसे गुरु नारायण के सुकोमल श्री चरणों में हम सतत नतमस्तक रहेंगे। अपने अंतर में उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा बढ़ाएंगे, भक्ति बढ़ाएंगे, निष्ठा से उन्हें पूजेंगे, आर्तता से उन्हें पुकारेंगे। समर्थ ने वामन पंडित को 12 वर्ष तपस्या करने के लिए कहा, परंतु 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी उनकी भक्ति में कुछ कमतरता रह जाने से समर्थ ने उन्हें पुनः 12 वर्ष तपस्या करने के लिए भेजा और तदुपरांत वामन पंडित पर अपनी कृपा का वरद हस्त रखा। श्री गुरु का कृपामय वरद हस्त हम पर रहे, इसलिए हमें भी साधना रूपी तपस्या अत्यंत निष्ठा से करनी चाहिए। तभी गुरु को लगेगा कि इस जीव पर अब अपनी कृपा का वरद हस्त रखना चाहिए। भगवान ने वामन पंडित से कहा कि जब तक गुरु का दाहिना हाथ सिर पर नहीं आता, तब तक किसी भी जीव की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती। परंतु गुरु को अपना दाहिना हाथ किस प्रकार रखना चाहिए, ये केवल और केवल गुरु ही जानते हैं। वह हाथ वे मानसिक रूप से भी रख सकते हैं और कृपा दृष्टि से भी रख सकते हैं। ये भी हम अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी हमें आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करने के लिए साधना सिखा रहे हैं। वे हमसे साधना करवा ले रहे हैं। हम प्रत्येक क्षण उनके अस्तित्व की अनुभूति लेने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव जी उनका कृपामय वरदहस्त हम पर सूक्ष्म रूप से रखने वाले ही है। वे किस रूप में रखने वाले हैं, उसे अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। गुरु का कृपामय वरदहस्त अनुभव कर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे, अपना जीवन हम सार्थक करेंगे। अपने जीवन में सगुण साकार रूप में अवतरित साक्षात श्री गुरु के, श्री गुरु नारायण के श्री चरणों में हम सभी एक बार अनंत कोटि कृतज्ञता भाव से नमन करेंगे। श्री गुरु चरणों में नतमस्तक होकर हम सभी उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। श्री गुरु का स्तुतिगान करते समय गुरुदेव जी का भक्तिभाव से स्मरण करेंगे। एक एक नमन रूपी भक्ति पुष्प हम श्री गुरु चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ऐसा भाव रखेंगे। जो अनंत है, अविनाशी है, ऐसे श्री गुरु तत्व को शतशा नमन। जो संपूर्ण शास्त्रों का रहस्य जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञानी गुरु को हमारा शतशा नमन। जैसे खिला हुआ पुष्प सभी को सुगंध देता है, मन को भी प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार जिनकी प्रीति गंध से सभी को दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, जिनके दिव्य सान्निध्य में सामने वाला अपना दुख निराशा भूलकर आनंदी और उत्साही हो जाता है, ऐसे परात्पर गुरु को हमारा शतशा नमन। साधक को उसके जीवन की अड़चने साथ ही अहंकार की बाधा का भान करवा कर उसका प्रारब्ध सुसह्य करने हेतु सहायता करने वाले, इतना ही नहीं अपितु काल के भी परे जाकर अपने साधकों का विचार करने वाले साधकों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाने वाले परम दयालु श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। सर्व जीवों को शांति की अनुभूति प्रदान करने वाले श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। सभी का हित चाहने वाले, सभी के हित की ही सोचने वाले, सभी का कल्याण करने वाले ऐसे परम कल्याणकारी श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। सभी के अपराधों को क्षमा कर सभी को प्रयत्नों का अवसर देने वाले क्षमाशील वात्सल्यमयी श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। जो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ है ऐसे एकमेव द्वितीय श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। करुणा के अथांग सागर सभी का परम मंगल करने वाले श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। जो भक्तों को आनंद परमानंद सच्चिदानंद इस प्रकार एक से बढ़कर एक उच्च प्रति का चिरंतन आनंद प्रदान करते हैं ऐसे श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। साधकों के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीनों ताप दूर करने वाले श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। साधना का और ईश्वर प्राप्ति का निश्चय दृढ़ हो ऐसी प्रेरणा देने वाले श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। सभी के प्राणप्रिय और भक्तवत्सल श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे जितेंद्रिय गुरुदेव के स्मरण से भी जितेंद्रिय अवस्था हमें अनुभव होती है ऐसे जितेंद्रियम वरिष्ठम श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। धर्म के ज्ञाता और धर्मानुसार आचरण करने वाले धर्म परायण सभी शास्त्रों में तत्वों का उपदेश करने वाले धर्म की संस्थापना के लिए ही जिनका जन्म हुआ है ऐसे धर्म संस्थापक प्रत्येक जीव के हृदय में सनातन धर्म राज्य की स्थापना करने वाले श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। ऐसे साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप समस्त बंधनों से मुक्ति देने वाले बंध मोक्षक श्री गुरु को हमारा शतशः नमन। शतशः नमन। शतशः नमन। सच तो ये है कि श्री गुरु को देने के लिए कोई उपमा ही नहीं, वे अनुपमेय है, अलौकिक है। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के श्री चरणों में भक्तिभाव से नमन पुष्प समर्पित करते समय हम पूर्ण रूप से उनके भक्ति रंग में ही रंग गए हैं। ऐसे श्री गुरुदेव जी का तत्व जन्मोत्सव के निमित्त से अब पढ़ता ही जाने वाला है। उस दिव्य कल्याणकारी गुरु तत्व की हम अधिकाधिक अनुभूति लेने का प्रयत्न करेंगे। गुरुदेव जी की प्रीति की कोई उपमा नहीं है। एक ही समय पर अनेक जीवों में साधना का बीज बोकर उनके जीवन को स्वर्णिम बनाने वाले एकमेवा द्वितीय हमारे गुरुदेव जी हैं। साधकों को साधना में आगे ले जाने हेतु निरंतर प्रोत्साहित करने वाले प्रेम स्वरूप ऐसे हमारे सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी हैं। सनातन के सहस्रों साधकों के योगक्षेम का अविरत वहन करने वाले हमारे प्राणप्रिय गुरुवर हैं। साधकों का आधार बनकर उन्हें अपनी प्रीति रूपी छाया प्रदान करने वाले माँ समान ममता एवं वात्सल्य देने वाले हमारे परम प्रीतिमय गुरुदेव जी है। साधकों पर असीम प्रीति करने वाले गुरुदेव जी अर्थात हमारे परब्रह्म स्वरूप गुरुवर प्रीति के मुकुट मणि हैं हमारे प्राणप्रिय गुरु भगवान। निरपेक्ष प्रेम के अथाह महासागर में प्रत्येक साधक को खींच लेने वाले ऐसे हमारे करुणा सिंधु गुरुदेव जी हैं। ऐसे परम दयालु गुरुदेव जी के श्री चरणों में हम सभी कोटि कोटि अनंत कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी जैसे परम प्रीतिमय गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम सभी का उद्धार सुनिश्चित है। श्री गुरुदेव जी की प्रीति से हम पाषाण समान जीवों के मोम की भांति पिघल चुके कठोर हृदय के भावों को शब्दबद्ध करना अब कठिन हो गया है, परंतु तब भी हम अपने परम दिव्य गुरुदेव जी की महिमा कैसे अनुभव कर सकते हैं। उसकी मन से हृदय से अनुभूति लेने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक शब्द के साथ ही हम अपने प्रीतिमय गुरुदेव जी की महिमा अपने हृदय पर अंकित कर लेंगे। गुरुदेव जी के विषय में अंतर से अपार कृतज्ञता भाव अनुभव करेंगे। सतगुरु मिले मोरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए री, भक्ति की ज्योत जगी घट भीतर, कोटि कर्म सब जल गए री। हे गुरुदेव जी, जब से आप हमारे जीवन में आए तब से हमारे सभी दुख दूर हुए हैं। आप ही ने हमारे अंतर के द्वार खोल दिए हैं। आप ही ने हमारे आनंद का मार्ग प्रशस्त किया है। आप ही की कृपा से हमारे हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हुई है। इस भक्ति की ज्योति से हमारे कोटि कोटि कर्मों के भवबंधन जलकर नष्ट हुए हैं। ये सब आप ही की कृपा है गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में अनंत कोटि अनंत कोटि कृतज्ञता। हे गुरुदेव जी, अनंत अनंत कोटि कृतज्ञता। हे गुरुदेव जी, आप ही की कृपा से हमारे अंदर का अंधकार संपूर्णता नष्ट हुआ है और हमारा अंतःकरण आपके तेज से जगमगा उठा है, भाव भक्ति से ओतप्रोत हो गया है। इसके साथ ही 8 पंखुड़ियों से युक्त अष्टदल कमल की भांति हमारे अंतर में भाव भक्ति रूपी कमल खिल गए हैं। ये आपके श्री चरणों में अर्पण करने के लिए ही है। आप ही की कृपा से हमारे अंतर में 68 दिव्य तीर्थों का संगम हुआ है। हम ऐसी पवित्रता की परम अनुभूति ले रहे हैं। आपके श्री चरणों में अनंत कोटि कृतज्ञता। हे गुरुदेव जी, अनंत अनंत कोटि कृतज्ञता। हे गुरुदेव जी, माया के सभी विषय नश्वर है तथा परम परमेश्वर ही सत्य है, इसका अब हमें ज्ञान होने लगा है। आप ही की कृपा से हमारी ये आत्म ज्योति आपकी अर्थात परमात्मा के ज्योति के साथ एकरूप होने की दिशा में अग्रसर है, अर्थात हमें साधना का उचित मार्ग मिला है। आपकी उंगली पकड़कर इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए हमें बल मिल रहा है, इसकी हम इस क्षण अनुभूति ले रहे हैं। हे तेजोमय गुरुदेव जी, आपके परम दिव्य सुकोमल श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता, अनंत कोटि कृतज्ञता। हे गुरुदेव जी, अनंत अनंत कोटि कृतज्ञता। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि 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 कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।